शहर की ओ, जब चले शहर की ओ।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम
आपके बीच आपके साथ। मैं अंजलि जोशी।
और मैं हूँ नरेन तिवारी।
और कार्यक्रम है जब चले शहर की ओर। नरेन, वैसे क्या तुमने कभी मुंबई में काम किया है?
हाँ किया है ना, पहले मैं मुंबई में ही काम करता था।
ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें पता होगा कि दिल्ली और मुंबई में काम करने में क्या फर्क है।
भाई देखो, मुंबई मुंबई है और दिल्ली दिल्ली। हर शहर की अपनी एक खास पहचान होती है। लोगों का रहन सहन, खान पान, काम करने का ढंग सभी कुछ अलग है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो अंजलि? क्या तुम मुंबई जाने वाली हो?
नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन हाँ है कोई और जो मुंबई जा रहा है।
कौन?
नरेन, वो तुम्हें आज का धारावाहिक शहर की ओर सुनने के बाद अपने आप पता चल जाएगा।
लेकिन उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अगर आप प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
दोस्तों, 35वें एपिसोड में आपने सुना, राजेश कविता से मिलने माया के घर जाता है। कविता राजेश को बताती है कि उसके माता पिता उनकी शादी के लिए मान गए हैं और वो कभी भी मुंबई आ सकते हैं। इधर चंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मधु के साथ ठीक नहीं किया। गजेंद्र चंद्र को बताता है और मधु को चिट्ठी लिखकर सारी बातें सच सच बताने की सलाह देता है। उधर गाँव में हरिंदर छुट्टियों में देहरादून से वापस गाँव आता है और माँ को कुछ पैसे देता है, जिन्हें देखकर माँ काफी खुश होती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
दिल को भवर कर पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
अरे चंदर, अरे यार चंदर, तूने ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा है?
अरे गज्जू, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
बात क्या भाई, बहुत खुश लग रहा है आज। लगता है मधु से बात हो गई आखिर।
अरे यार तू उसे छोड़, ये अखबार देख।
क्या खास बात है आज के अखबार में भाई, दिखा जरा। दिल्ली में एक और वृद्ध दंपति की हत्या। अरे यार पता नहीं क्या हो गया लोगों को, हर रोज बस यही छपता अखबार में, और क्या है।
अरे यार मैं इस खबर की नहीं, इसके नीचे छपे विज्ञापन की बात कर रहा हूँ। ये देख, शिपिंग इंडस्ट्री में आए, 50,000 रुपए महीने तक कमाए, योग्यता से 10वीं पास।
अरे चंदर, वो मेरे भाई ऐसे विज्ञापन रोज छपते इन अखबारों में, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है।
देखना गज्जू, नीचे नंबर भी लिखा है, मैंने बात की थी, नौकरी की गारंटी भी दे रहे हैं ये लोग।
भाई जब तूने बात कर ही ली है तो मुझसे क्या चाहता है?
यार मैं चाह रहा था कि हम नौकरी के लिए उन लोगों के पास जाएं।
ठीक है, वक्त मिला तो मिल लेंगे, लेकिन जाना कहाँ है?
बम्बई।
क्या मुंबई? तेरा दिमाग तो ठीक है यार। अरे यहाँ अच्छी खासी नौकरी चल रही है और तू मुंबई जाने की बात कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगा मुंबई। मुंबई
गज्जू, पैसे भी तो देख, पूरे 50,000 दे रहे हैं।
अरे चंदर तू कुछ भी कह यार, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बस। और अगर ये विज्ञापन झूठा निकला तब हम क्या करेंगे है? भाई देख, हम यहीं रहकर और अच्छी नौकरी तलाश कर सकते हैं, और अब तो हमारे पास अनुभव भी है यार, हम दिल्ली में रहकर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।
लेकिन 50,000 रुपए तो नहीं मिलेंगे ना। देख तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। और अगर जल्दी ही साहूकार के पैसे नहीं चुकाए तो घर और खेत दोनों हड़प लेगा। एक मौका मिला है सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का, और तू चाहता है मैं उसे छोड़ दूं? यार तुझे अपना दोस्त समझाता, चाहता था अगर मैं तरक्की करूं तो तू भी करे, और आज जब तरक्की पाने का मौका हाथ आया है तो तू मेरा साथ देने से पीछे हट रहा है।
नहीं चंदर, ऐसी बात नहीं है यार।
ऐसी ही बात है गज्जू, तू अपनी सारी जिंदगी इसी होटल में गुजार सकता है, लेकिन मैं जिंदगी भर रसोईया बनकर काम नहीं कर सकता। और वैसे भी मुंबई सपनों का शहर है, वहां सबके सपने सच होते हैं। और क्या तू नहीं चाहता कि तेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, उसका अच्छा भविष्य बने?
चाहता हूँ यार, लेकिन
लेकिन उस सब के लिए पैसों की जरूरत होती है, और अगर पैसे नहीं होगा तो कल को तेरा बेटा भी हमारी ही तरह ढाबे या रेस्टोरेंट में किसी की टेबल पर प्लेटें सजा रहा होगा।
चंदर लेकिन।
लेकिन क्या गज्जू?
ठीक है चंदर, मैं तेरे साथ मुंबई चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले एक वादा करना होगा तुझे। देख जैसे ही हमारे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हम वापस दिल्ली आ जाएंगे।
हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है।
तो ठीक है।
सर आपका ऑर्डर।
थैंक यू।
सर आप कुछ और लेंगे?
नहीं, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे।
थैंक यू सर।
कविता, जब से तुम गांव से वापस आई हो बस सब कुछ फिर से अच्छा लगने लगा है।
फिर मक्खन बाजी?
कविता, तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है।
अच्छा, मान लिया जनाब, पर हम लंच ऑफिस की कैंटीन में भी तो कर सकते थे।
कविता, तुम्हारे बिना मैंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, आज तुम साथ हो तो सोचा क्यों ना लंच बाहर ही किया जाए।
राजेश, तुम कभी नहीं सुधरोगे।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं?
कभी भी आ सकते हैं।
मतलब?
मतलब ये कि मम्मी पापा ने अपने आने की कोई डेट नहीं बताई है।
तो हम मम्मी पापा को बॉम्बे आने की डेट दे देते हैं।
यानी कि
हम दोनों मिलकर उन्हें एक चिट्ठी लिखते हैं और बॉम्बे आने का फॉर्मल निमंत्रण भेज देते हैं।
बहुत जल्दी है तुम्हें मम्मी पापा से मिलने की।
अरे भाई, जब उनसे ओके का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो हम दोनों की शादी होगी।
वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, हम आज ही उन्हें लेटर लिख देंगे। हाँ,
साथ में कुछ पैसे भी भेज देंगे।
लेकिन
तुम समझती नहीं कविता, अब गांव इतना पास तो है नहीं, आने जाने में खर्चा भी तो होगा ना। अगर पैसे होंगे तो वो आराम से आ सकेंगे। ये लो कुछ रुपए, रख लो।
लेकिन राजेश, तुमसे रुपए?
कविता, अब ये मेरा और तुम्हारा क्या, सब कुछ हमारा ही तो है।
ठीक है ठीक है, और कुछ?
हाँ, उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहना।
यस सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही चिट्ठी में लिख दूंगी।
अले शैतान, दादी को मारता है हाँ? बदमाश कहीं का।
अरे माँ जी, बचिएगा जरा इससे, बहुत शैतान होता जा रहा है ये।
अरे नहीं मीरा, ये मेरे लिए शैतान नहीं है, ये तो मेरा बाल गोपाल है, और शरारत ये नहीं करेगा तो क्या इसकी दादी करेगी।
दीदी, अब तो रोशन को टीका लगवाने का समय आ रहा है।
हाँ मधु, सोच रही हूँ कल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चली जाऊँ।
अरे किस लिए मीरा?
वो माँ जी, रोशन को टीका लगवाना है ना।
अरे कोई जरूरत नहीं है रोशन को टीका वीका लगवाने की, बेकार में बुखार आ जाएगा।
पर माँ जी।
अरे कुछ नहीं होता इन सुइयों के लगवाने से, ये तो बस डॉक्टरों के नए नए तरीके हैं पैसा ऐंठने के।
लेकिन माँ जी, ये टीके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाते भी।
अरे बस बस मधु, अब ज्यादा होशियार मत बन।
माँ जी, अगर रोशन को समय पर टीका नहीं लगवाया तो।
माँ जी आपने देखा है ना फुलबा चाची के बेटे को?
अरे उसे कौन नहीं जानता, उसका एक पैर खराब है ना।
खराब नहीं है माँ जी, उसके पैर में पोलियो है। अगर फुलवा चाची ने समय पर पोलियो की दवा उसे पिलवा दी होती तो आज उनका बेटा अपने पैरों पर सीधा खड़ा होकर चल सकता था।
लेकिन
आप ये तो नहीं चाहेंगी ना कि हमारा रोशन भी फुलवा चाची के बेटे की तरह ही।
नाना मधु, तुझे जो ठीक लगता है सो कर, अब तू कल ही जाके रोशन को टीका लगवा लिया, और हाँ डॉक्टर को ज्यादा पैसे मत देना।
माँ जी, ये टीके सभी सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगाए जाते हैं। तो दीदी, कल आप जरूर रोशन को लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चली जाइएगा, इस काम में जरा भी लापरवाही ठीक नहीं है।
चंदर, मुंबई के लिए हमें कब निकलना है?
यार मालिक से बात करके दो चार दिन में निकलते हैं।
चंदर, तूने मधु को बता दिया ना तू मुंबई जा रहा है?
नहीं यार, अभी नहीं बताया।
और घर पर पैसे?
बस आज कल मैं भेज दूंगा, कम से कम मधु का काम करना तो बंद होगा।
यार मधु अगर खुद काम करके पैसा कमा रही है तो गलत क्या कर रही है?
अरे जब मैं हूँ पैसे कमाने के लिए तो फिर भला उसको कमाने की क्या जरूरत है।
कमाल है यार, पिछले 7 महीने से तू मेरे साथ है और मुझे नहीं लगता कि तूने अब तक अपने घर वालों को कोई पैसा भी भेजा है, और ऐसे में अगर तेरी पत्नी कुछ काम धंधा करके पैसा कमा रही है और तेरे परिवार को संभाल रही है तो तुझे लगता है वो गलत कर रही है?
नहीं गज्जू, ऐसी बात नहीं है।
चंदर, बहुत किस्मत वाला है तू जो मधु जैसी समझदार पत्नी तुझे मिली है।
मैं मानता हूँ वो समझदार है, लेकिन मेरे होते हुए वो काम करे यार, ये मुझे पसंद नहीं।
यार लेकिन चंदर तू।
चल छोड़ यार, तू भी पता नहीं कैसी बातें लेकर बैठ गया।
अगर तू मेरी बात नहीं समझना चाहता तो तेरी मर्जी, मैं जरा बैंक होकर आता हूँ, मुझे कुछ पैसे घर वालों को भेजने हैं।
मधु, ओ मधु।
आई माँ जी।
जी माँ जी।
बारी देख तो गाय शायद प्यासी है, जा बाहर से 2 बाल्टी पानी लाकर इसे पिला दे जरा।
ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ।
राम राम फूलमती बहन।
अरे सेठ जी आप यहाँ?
अब क्या करूँ बहन, जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो मेरे दरवाजे पर आते हैं। और जब वो पैसा लेकर भूल जाते हैं तो मुझे मजबूर होकर उनके दरवाजे पर जाना पड़ता है उनसे अपना पैसा वसूलने। मेरे पैसों का क्या हुआ?
सेठ जी, अभी मेरे दोनों बेटे शहर गए हुए हैं और घर में ढंग से खाने को भी नहीं है। जैसे ही चंदर पैसे भेजेगा मैं खुद आपके पैसे लेकर आपके पास पहुँच जाऊंगी।
ना बहन, असल ना सही ब्याज तो लेकर ही जाऊंगा।
सेठ जी, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए।
ना बहन, बिल्कुल नहीं। अब बहन के यहाँ से खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ये गाय ले जाता हूँ, इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे।
सेठ जी, घर में एक छोटा बच्चा भी है, उसकी जरूरत का तो ख्याल कीजिए।
एक बार जरूरत का ख्याल किया था तभी तो पैसे दे दिए थे तेरे नालायक बेटे को। अब नहीं करूँगा, मैं गाय लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, अगर जल्दी मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों बेचकर अपने पैसे निकाल लूंगा। चल चल चल
सेठ जी,
चल चल गाय।
सेठ जी,
चल 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 चल।
हे भगवान, अब तो हमारा ये सहारा भी गया।
अंजलि, अब मुझे समझ में आया तुम मुंबई के बारे में इतना क्यों पूछ रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने यही सवाल हमारे प्रवासी दोस्तों से पूछा कि वो मुंबई और दिल्ली के माहौल में कितना फर्क महसूस करते हैं?
नहीं, पूछा तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो अभी पूछ लेते हैं।
दिल्ली और बम्बई में नौकरी करने में मेरे हिसाब से कई फर्क हैं। एक तो दिल्ली घर के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, बम्बई घर से बहुत दूर है, और बम्बई में हर बार बरसात में बाढ़ आती है तो बम्बई उतनी सेफ नहीं है जितनी कि दिल्ली।
दिल्ली जो था निम्न वर्ग का जो कर्मचारी छन उनको गुजारो बड़ मुश्किल हो गए, और नौकरी जो था मिले जो मुझे कि कोई डिप्लोमा हो, डिग्री हो और उच्च अधिकारी की कई सिफारिश हो, फिर दिल्ली में छोटी मोटी नौकरी मिल ली तो गुजारो नहीं होने। एक तो बहुत महंगा ऐसा, दूसरा उच्च स्तर का लोग रहना जो कि मतलब जब मुझे छोटा मोटा आदमी गुजारो बहुत मुश्किल था। तो बम्बई एक माया नगरी के रूप में जानी जाती, हालांकि हमारे बुटन काफ़ी दूर छो, लेकिन वो जो था एक तो नौकरी आसानी से मिल जानी रे गुजारा की बात। तो गुजारो मुझे एक गरीब आदमी अपनों 5-7 रुपये में अपनों पेट भर सकता।
मैंने बम्बई में 2 साल नौकरी की है और दिल्ली में 4 साल में रहा हूँ। तो वहाँ की लाइफ और दिल्ली की लाइफ में बहुत अंतर है, जैसे कि लाइफ बहुत फास्ट होती है मुंबई में, और वहाँ पर कमरे के किराए की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर कमरे मिलते नहीं है सही से।
दिल्ली में सैलरी थोड़ा कम है, मुंबई में थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन रहने में वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं और रूम वगैरह महंगे मिलते हैं। दिल्ली में सामान जो है कि थोड़ा सस्ता मिल जाता है और मुंबई में थोड़ा रेट महंगे मिलते हैं, उसमें सामान में भी हर चीज़ में भी काफ़ी कुछ होता है।
लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं, सोने की राहों में सोने को जगह नहीं।
साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है।
शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया मुंबई नगरिया।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लोगों की राय, जिसे जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
नरेन, क्या तुम्हें पता है कि आज हम अपने श्रोताओं को किससे मिलवाने वाले हैं?
अंजलि, कौन है आज के खास मेहमान?
आज हम अपने श्रोताओं को एक ऐसे दंपत्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि महिलाओं को काम करना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए भी।
आपका परिचय?
मेरा नाम सोनम है और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4 साल से काम कर रही हूँ।
आपके मन में काम करने का विचार कैसे आया?
12th पास करने के बाद से ही मेरे मन में जॉब करने की ख्वाहिश जागी थी, इसलिए मैं अपनी खुशी से ये जॉब करती हूँ। जॉब करने से बाहर की जानकारियाँ तो मिलती ही है और इससे भविष्य भी सिक्योर रहता है।
काम के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई और आप उनसे कैसे जूझे?
काम करने के दौरान शुरुआत में तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई, जैसे कि मेरे घर वाले मेरी जॉब के खिलाफ थे, किसी को मेरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और कभी कभार अगर मैं रात को लेट आती थी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था और मेरा कोई साथ नहीं देता था। लेकिन मैंने घर के प्रति अपने फ़र्ज़ को और भविष्य दोनों को संभाला, हर काम को पूरी ईमानदारी से किया और खुशी खुशी किया। इस तरह से आज जॉब भी कर रही हूँ और पूरा परिवार मेरे साथ है, खासकर मेरे पति। मेरे पति तो मेरा सबसे ज़्यादा साथ देते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। और मुझे क्या चाहिए?
नरेन, वैसे आज की हमारी शहर की ओर की कहानी सुनते वक्त तुम्हें गुस्सा नहीं आया?
वो क्यों?
अरे देखो ना, साहूकार कैसे पैसा ना मिलने पर चंदर के घर से गाय खोल कर ले गया और साथ ही घर और खेत बेचने की धमकी भी दे गया।
बुरा तो बहुत लगा अंजलि, लेकिन गलती चंदर की भी है।
नरेन, तुम्हें क्या लगता है, साहूकारों से ऋण लेना सही है? और अगर सही है भी तो किस हद तक?
अंजलि, अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे लगता है कि अगर हम भैजी से इस बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार अंजलि, कहिए कैसे याद किया आप लोगों ने मुझे?
भैजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या साहूकारों से ऋण लेना सही है?
और अगर सही है भी तो किस हद तक?
देखिए, ऋण लेने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब बैंक ये सुविधा दे रहा है तो लोगों को साहूकारों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर कहीं बैंक की सुविधा मौजूद ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
अगर बैंक की सुविधा नहीं है तब लोग साहूकार से ऋण ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ऋण लेते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।
जैसे?
जैसे ब्याज दर का।
मतलब?
मतलब आप साहूकार से ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर के बारे में पहले से ही बातचीत कर लें और दर को कोशिश करें कि कम से कम रखें। दूसरी बात ये कि जब साहूकार आपको ऋण दे उस समय भूलकर भी किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर ना करें, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। हमेशा पूरी तरह से समझकर ही किसी एग्रीमेंट पर साइन करें, मगर कागजी लिखा पढ़ी का होना बहुत जरूरी है। तीसरी और आखिरी बात, जिस भी कागज पर हस्ताक्षर करें उसे अच्छी तरह से पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसे पढ़वा लें, ताकि आपको पता चल सके कि अगर किसी वजह से आप ऋण चुका नहीं पाए तो साहूकार को केवल आपकी उस संपत्ति को बेचने का अधिकार होगा जिसे आपने गिरवी रखा है। और ये भी जरूरी है कि सभी कागजात की एक कॉपी आप अपने पास संभाल कर रखें।
तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जो भैजी ने बताई। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक से ऋण लें, और अगर साहूकार से ऋण लेते हैं तो भैजी द्वारा बताई गई बातों का खास ध्यान रखें।
सस करदा मेरा गाड़ी का बिरेक पे हल्का डॉन माँ, सस सस करदा मेरा गाड़ी का बिरेक पे हल्का डॉन माँ,
अबे हल्का डॉन माँ, अबे हल्का डॉन माँ, अबे हल्का डॉन माँ, अबे हल्का डॉन कुछ नी दुआने चली जान भेजो, इलारम भारियों रांदो सुबेरा कुम्योरू मुके हाथ कुछ
कुछ नी दुआने चली जान भेजो रोटी सन मंगी रांदी लगाई की गाड़ी सवारी जो मिली गीत बनी जांदी ध्याड़ी कभी जांदू में पौड़ी खा कभी जांदू टीरी गढ़वाल कभी जांदू में श्रीनगर कभी जांदू में मोन खाल कभी कबारी लंबा टूर पर चली जांदू मैं लेंसी डॉन माँ कभी कबारी लंबा टूर पर चली जांदू मैं लेंसी डॉन
माँ
दोस्तों अब वक्त हो चला है काम की बात का
जिसमें हम आपको बताने वाले हैं टीकाकरण के बारे में
अंजलि तुम्हें पता है टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये बच्चों को कई भयानक बीमारियों और उनके संक्रमण से बचाता है जैसे खसरा टीबी और पोलियो
बिल्कुल नरेन बच्चों के शरीर में कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म से होती है और काफी हद तक ये माता के दूध से प्राप्त होती है
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कई ऐसी बीमारियां लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिनसे बचने के लिए टीकाकरण एकदम आवश्यक है
अरे वाह नरेन तुम्हें तो टीकाकरण के बारे में बहुत जानकारी है
इतना ही नहीं अंजलि टीका लगवाते समय कुछ और बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए
जैसे
जैसे टीका लगवाते समय बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो या बच्चे पर पहले किसी टीके का गलत प्रभाव न पड़ा हो
बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो मतलब
ये कि बच्चे को किसी भी तरह का बुखार या लंबे अरसे की खांसी या ऐसी कोई शारीरिक शिकायत ना हो और बच्चा कैंसर अथवा एचआईवी एड्स से पीड़ित ना हो और यदि टीका लगवाने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नजर आता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है
अरे नरेन तुम सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गए
कौन सी बात
बच्चों को टीके निर्धारित समय पर उनकी उम्र के अनुसार ही लगवाने चाहिए
जी हाँ दोस्तों जैसे पैदा होते ही बीसीजी का इंजेक्शन और 1.5 महीने से 3.5 महीने के बीच निर्धारित समय पर डीपीटी के 3 टीके और फिर 1.5 साल और 2 साल के बीच डीपीटी का बूस्टर
और 5 वर्ष तक जब भी आपके गांव या शहर में पोलियो कैंप लगे बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स देना न भूलें
हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप भी अपने बच्चे को सभी टीके लगवाएंगे और उन्हें एक स्वस्थ जीवन देने की कोशिश करेंगे
तो दोस्तों ये थी आज की काम की बात अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं
और नंबर है हमारा 9197176782223 और दोस्तों अब समय हो चुका है आज की चिट्ठी का तो भाई अंजलि कौन है आज के वो भाग्यशाली विजेता जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव से आज का इनाम जीता है
नरेन हमारे आज के विजेता हैं प्रेम नारायण झा जिन्होंने हमें मधुबनी बिहार से चिट्ठी लिखी है ये लिखते हैं कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जब शहर की ओर आते हैं तो अकेले ही आते हैं साथ ही किसी सगे संबंधी का पता भी लाते हैं जिससे कि शुरू शुरू में रहने सोने में परेशानियां कम हो लेकिन मेरी कहानी इन सब से कुछ अलग ही है मैं वर्ष 1989 का BA का स्टूडेंट था उसी दौरान कॉलेज के अपनी ही जाति की एक छात्रा से मेरा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ जिसका पता दोनों पक्षों के अभिभावकों को भी लग गया हमारे द्वारा उठाया गया ये कदम परिवार वालों को नागवार गुजरा जब तक वो लोग हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने के प्लान पर अमल करते उससे कुछ ही समय पहले हम दोनों अपना अपना बोरिया बिस्तर और 1400 रुपए साथ लेकर पटना होते हुए दिल्ली आ गए क्योंकि घर से भागे थे इसलिए अपने सगे संबंधियों से मिलने की तो बात थी ही नहीं खैर हमने अपना हौसला नहीं खोया और दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 400 रुपए का एक रूम किराए पर लिया फिर मैंने 2-4 दिनों तक नोएडा और आसपास के इलाकों में नौकरी के लिए प्रयास भी किया लेकिन कहीं भी 700-800 रुपए से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल रही थी वैसे तो इसमें भी तत्काल हम लोगों का गुजर हो जाता लेकिन एक भी पैसा बचने की संभावना नहीं के बराबर थी आखिरकार मैंने थाली में नारियल बेचना शुरू किया जिससे करीब हर रोज 40-45 रुपए की बचत हो जाती थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और सीजनल फलों का भी धंधा मैं करने लगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। 1991 के जून में हम लोग कॉलेज से भागे थे। हम लोगों की चाहत थी कि शादी घर वालों की मर्जी से ही हो। पत्राचार करते करते 19 फरवरी 1995 में दोनों पक्षों के लोग हमारी शादी के लिए राजी हो गए और धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। शादी के बाद हमारे दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। इधर दिल्ली में हमारी 4 गाड़ियां हैं जो कि कॉल सेंटर में किराए पर चल रही हैं। अब हम सभी बहुत खुश हैं।
भाई प्रेम नारायण जी, आपका प्रवास का अनुभव तो काफी दिलचस्प था। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, प्रेम नारायण जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
चिट्ठियां लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं और इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
हर दिल जो प्यार करेगा
और दोस्तों, अब बारी है आज के संदेशों को सुनने की,
जिन्हें भेजा है हमारे प्रवासी दोस्तों ने अपने दोस्तों के लिए,
अपने परिवार वालों के लिए
या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए।
तो आइए सुनते हैं आज के संदेश।
मेरा नाम शकुंतला और मेरे गांव का नाम धारकोट। मैं संदेश देना चाहन छो अपने दीदी ते। मेरी दीदी रंदी देहरादून दीपनगर में जी। दीदी को नाम धर्मा देवे और उनका जन को नाम मतलब शौकीन सिंह सजान। तो मतलब हूँ ते संदेश मयन देना चाहन छो। अब उनको नोने आवा को ब्याह मार्च में जी। तो मतलब यख मतलब सब लोग ठीक है, मतलब मौसम भी अच्छा है, सब राज्य को सेन। तो मतलब उनको नोने आवा को ब्याह तो अब हम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब हम ते मार्च में जी मिल रहा।
मैं चंपा देवी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी ताई जी नाम भगवती देवी ग्राम पिनाकपुर चकोटिया उत्तराखंड में रहती हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ। ताई जी नमस्कार तथा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों में आपकी कोई खबर नहीं मिली। हम सब दिल्ली में सकुशल हैं तथा भगवान की दया से आप भी राजी खुशी होंगी। मेरा ये संदेश सुनने के बाद आप तुरंत दिल्ली फोन करें।
मैं विनोद सिंह रावत बोलो छो तलविन बटी के। आज मैं अपने माँ से संदेश देना चाहूँ छो कि माँ आप पर ख्याल रखे और काम काज को करिए हर तपन उत्सपन इन्हें उन्हें अपने फर्स्ट क्लास अपने शरीर पर ध्यान दे। यही मैं बस संदेश देना चाहूँ।
मेरा नाम पुष्पा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं ये संदेश कोरदार अपनी नानी को देना चाहती हूँ। मेरी नानी बहुत बूढ़ी है और बहुत लाचार है। और नानी आप कैसी हो? ठीक हो? अपनी सेहत का ध्यान रखना और ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है। घर में आराम करना, दवाई वगैरह टाइम से लेना और मामा को भी नमस्कार कहना।
तो ये थे आज के संदेश। और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, प्रवास से जुड़ी छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके और हमारे प्रवासी दोस्तों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए। और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी आप हमें चिट्ठियों के जरिए बता सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भड़ज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें प्रवास से जुड़े अपने अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।